एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम मन की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो पूरब और पश्चिम के ज्ञान को मिलाती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मार्क एपस्टीन की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब की, थॉट्स विदाउट अ थिंकर, साइकोथेरेपी फ्रॉम अ बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव।
हाँ, ये किताब पश्चिमी मनोचिकित्सा और जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसके संगम पर एक बहुत ही अलग नजरिया देती है।
सही कहा।
और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें तनाव, चिंता, खुद को समझने की जो चाहत है, ये सब बहुत बढ़ गया है, तो ये विषय और भी जरूरी हो जाता है ना।
बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं।
हाँ,
दुख से मुक्ति का रास्ते तलाश रहे हैं।
हाँ,
और ये किताब यही दिखाती है कि कैसे ये दो अलग अलग से लगने वाले रास्ते, मतलब पश्चिम और पूरब के, असल में एक ही मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। सही बात है, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल समझ देती है कि हम अपने मन को बेहतर कैसे समझें।
तो चलिए सबसे पहले लेखक से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर मार्क एपस्टीन कोई साधारण मनोचिकित्सक नहीं है ये।
हाँ, उनकी पृष्ठभूमि काफी अनोखी है। वो हार्वर्ड से प्रशिक्षित मनोचिकित्सक हैं, न्यूयॉर्क में उनकी अपनी प्रैक्टिस है, पढ़ाते भी हैं क्लिनिकल साइकेट्री।
तो ये तो हुआ उनका वो पश्चिमी अकादमिक पक्ष।
लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि वे कई दशकों से, शायद 1970 के दशक से ही, बौद्ध ध्यान, खासकर विपश्यना, उसका गंभीरता से अभ्यास कर रहे हैं।
जी हाँ, और उन्होंने जोसेफ गोल्डस्टीन, शैरन साल्सबर्ग जिसे जो जाने माने शिक्षक हैं, उनसे सीखा है।
तो सोचिए, एक तरफ फ्रॉयड, विनिकॉट जैसे पश्चिमी मनोविश्लेषकों की गहरी समझ,
और दूसरी तरफ बुद्ध की शिक्षाएं, ध्यान का अपना निजी अनुभव, ये जो संगम है ना, यही उन्हें इतना प्रभावी बनाता है।
बिल्कुल, वो सिर्फ दो अलग दुनियाओं के सिद्धांतों की तुलना नहीं कर रहे हैं, वो एक पुल बना रहे हैं ना। हाँ
वो मुश्किल लगने वाली बौद्ध अवधारणाओं को,
हाँ
जैसे अनात्मन,
यानी कोई स्थायी स्व नहीं,
हाँ,
या शून्यता, इनको वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के उदाहरणों से समझाते हैं, अपने मरीजों की कहानियों से जोड़कर।
इससे होता ये है कि ये जो प्राचीन ज्ञान है वो हम जैसे आज के लोगों के लिए एकदम रिलेटेबल, समझने लायक बन जाता है।
एक तरह के अनुवादक हैं वो, दो भाषाओं को, मनोचिकित्सा और बौद्ध धर्म, हमारे लिए एक कर रहे हैं।
तो किताब के मूल विचार पर आते हैं, थॉट्स विदाउट अ थिंकर। आखिर कहना क्या चाहती है ये किताब?
इसका सार देखें तो ये है कि सच्ची मानसिक स्वतंत्रता पाने के लिए हमें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत कहानियों, अपने इतिहास को समझना ही काफी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि हमें अपने मन की जो कार्य प्रणाली है, उसके जो पैटर्न्स हैं, उनको भी समझना होगा। एपस्टीन कहते हैं कि ये दोनों चीजें, पश्चिमी मनोचिकित्सा और बौद्ध ध्यान, ये मिलकर हमें एक ज्यादा संपूर्ण रास्ता दिखाते हैं।
हाँ, मतलब किताब ये तर्क देती है कि पश्चिमी थेरेपी अक्सर हमारे जीवन के कंटेंट यानी विषय वस्तु पर ध्यान देती है, हमारे बचपन के अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं।
बिल्कुल, ये समझने में मदद करती है कि हम क्यों ऐसे हैं, हमारी कहानी क्या है।
जबकि बौद्ध मनोविज्ञान, खासकर माइंडफुलनेस या सचेतन ध्यान, वो मन की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देता है, विचार कैसे आते जाते हैं, भावनाएं कैसे उठती हैं, कैसे शांत होती हैं।
हाँ, हम चीजों से कैसे जुड़ते हैं या उनसे दूर भागते हैं, ये कैसे पर ध्यान देता है, मन काम कैसे करता है पल पल।
और एपस्टीन ये भी बताते हैं कि अकेले हर प्रणाली की कुछ सीमाएं हो सकती हैं, जैसे सिर्फ थेरेपी पर ध्यान देने से हम अपनी मैं की कहानी में और उलझ सकते हैं।
हाँ, एक समस्याग्रस्त स्व को ठीक करने की कोशिश में ही लगे रह सकते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ अगर बौद्ध ध्यान का अभ्यास बिना अपनी मनोवैज्ञानिक, क्या कहते हैं, जटिलताओं को समझे किया जाए, तो वो एक तरह का स्पिरिचुअल बाईपासिंग बन सकता है।
सही कहा, मतलब हम ध्यान का इस्तेमाल अपनी मुश्किल भावनाओं या रिश्तों की समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगे।
तो एपस्टीन का सुझाव है कि इन दोनों को साथ लाना जरूरी है। पहले अपनी कहानी समझें, अपने भावनात्मक घावों पर काम करें, जो मनोचिकित्सा का काम है,
और फिर मन की प्रकृति को, स्व के भ्रम को समझें, जो ध्यान का काम है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि विकास के चरण हैं एक तरह से।
ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। चलिए अब किताब के कुछ मुख्य विषयों में और गहराई से उतरते हैं। एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास जिससे किताब शुरू होती है वो है अहंकार और अनात्मन का।
हाँ,
पश्चिमी मनोचिकित्सा अक्सर एक स्वस्थ, मजबूत अहंकार या सेल्फ बनाने पर जोर देती है, वहीं बौद्ध धर्म कहता है कि स्थायी स्व या सेल्फ जैसा कुछ है ही नहीं, ये एक भ्रम है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं?
ये सच में किताब का दिल है। देखिए, बौद्ध अवधारणा अनात्मन अनात्ता का मतलब ये नहीं कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है।
अच्छा।
बल्कि ये कि कोई ठोस स्थायी अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं समझते हैं वो असल में क्या है? विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, शारीरिक संवेदनाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है।
जैसे नदी हर पल बदल रही है, पर हम उसे नदी कहते हैं।
बिल्कुल वही। और ये पश्चिमी सोच के एक स्थिर निश्चित सेल्फ के विचार से बिल्कुल अलग है। बौद्ध धर्म कहता है कि हमारा ज्यादातर दुख, जिसे दुख कहा गया है,
हाँ,
वो इसी स्थिर मैं के विचार से चिपके रहने से पैदा होता है। हम लगातार इस काल्पनिक मैं को बचाने, उसे खुश रखने, उसकी पहचान बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं।
और जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, या जब हमें लगता है कि इस मैं को खतरा है, तो हमें दुख होता है।
हाँ, इसलिए अनात्मन को समझना, ये जानना कि मैं एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी चीज नहीं, ये दुख से मुक्त होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
तो ये स्व का भ्रम दुख देता है, पर ये भ्रम आता कहाँ से है? यहीं पर फ्रॉयड का अचेतन और बुद्ध की अविद्या की अवधारणाएं तस्वीर में आती हैं। किताब इन दोनों में एक समानता देखती है।
बिल्कुल। अविद्या का मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये वास्तविकता की, खासकर स्व के प्रकृति की एक बुनियादी गलतफहमी है। एक तरह का अज्ञान कि हम चीजों को वैसा नहीं देख पा रहे हैं जैसी वे असल में हैं।
कैसे हैं वो असल में?
क्षणभंगुर, एक दूसरे पर निर्भर और एक स्थायी स्व से खाली।
तो जैसे मनोविश्लेषण हमारे दमित अचेतन विचारों और इच्छाओं को चेतन मन में लाने की कोशिश करता है ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें,
वैसे ही बौद्ध ध्यान अभ्यास इस मौलिक अज्ञान या अविद्या को प्रज्ञा या विवेक, विजडम से बदलने का लक्ष्य रखता है, ताकि हम वास्तविकता को, अपने मन की प्रक्रियाओं को बिना भ्रम के सीधे सीधे देख सकें।
एक तरह से दोनों ही अंधेरे में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल।
और इच्छाओं का क्या? फ्रॉयड ने प्लेजर प्रिंसिपल की बात की कि हम सुख खोजते हैं और दुख से बचते हैं। बुद्ध ने तृष्णा यानी क्रेविंग या चाहत को दुख का एक मूल कारण बताया। इन दोनों में क्या कनेक्शन है?
कनेक्शन गहरा है। दोनों ही मानते हैं कि अतृप्त इच्छाएं हमारे दुख के केंद्र में हैं। फ्रॉयड इसे हमारे अनसुलझे मनोवैज्ञानिक संघर्षों से जोड़ते हैं, बचपन की अधूरी जरूरतें, दमित इच्छाएं। थेरेपी हमें इन इच्छाओं के पीछे की व्यक्तिगत कहानियों को समझने में मदद करती है।
जैसे, मुझे हमेशा दूसरों से तारीफ क्यों चाहिए?
इस तरह के सवाल।
हाँ, और बुद्ध तृष्णा को एक ज्यादा सार्वभौमिक पैटर्न के रूप में देखते हैं। किसी चीज को पाने की चाहत, उसके मिलने पर क्षणिक सुख, फिर वो सुख खत्म होने पर दुख, और फिर किसी नई चीज की चाहत, ये चक्र चलता रहता है।
ये तो हम सब अनुभव करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान की भूमिका आती है। थेरेपी कहानी समझने में मदद करती है, जबकि ध्यान हमें इच्छा की उस ऊर्जा को, उस चाहत को उसी पल महसूस करना और देखना सिखाता है, बिना उस पे तुरंत अमल किए या उसमें बहे।
इसे बेयर अटेंशन या निरी जागरूकता कहते हैं शायद।
हाँ, बिल्कुल। जब हम इच्छा को सिर्फ एक मानसिक घटना के रूप में देखना सीख जाते हैं, ना कि मेरी इच्छा, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है।
ये बेयर अटेंशन या जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं, ये किताब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सिर्फ रिलैक्स करने या तनाव कम करने की तकनीक से कहीं ज्यादा है ना?
बिल्कुल। ये आत्मनिरीक्षण का, अपने मन को जानने का एक शक्तिशाली उपकरण है। एब्स्टीनिस की तुलना मनोविश्लेषण की फ्री एसोसिएशन तकनीक से करते हैं।
अच्छा, फ्री एसोसिएशन, जिसमें मरीज को बिना रोक टोक के जो मन में आ रहा है वो बोलने को कहते हैं?
हाँ, ताकि अचेतन सामग्री बाहर आ सके। माइंडफुलनेस में भी हम मन में उठने वाले विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं को बिना सेंसर किए, बिना जज किए, बस आने जाने देते हैं और उन्हें देखते हैं।
तो फर्क क्या हुआ?
फर्क यह है कि फ्री एसोसिएशन अक्सर कहानी के कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि माइंडफुलनेस मन की प्रक्रिया पर। ये विचार कैसे उठ रहा है, ये भावना शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, हम इस पर प्रतिक्रिया कैसे कर रहे हैं।
और इसका फायदा?
सबसे बड़ा फायदा है हमारी प्रतिक्रिया करने की आदत, रिएक्टिविटी से मुक्ति। जब हम अपने गुस्से या चिंता वाले विचारों को सिर्फ विचार के रूप में देखना सीखते हैं, न कि मैं या मेरा सत्य,
हाँ,
तो हम उनके बहकावे में आने से बच जाते हैं। हमें प्रतिक्रिया करने के बजाय चुनाव करने की थोड़ी सी जगह मिल जाती है। ये छोटी सी जगह ही आजादी की शुरुआत है।
ये तो बहुत व्यवहारिक बात है। किताब में एक और दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है, DW विनिकॉट का होल्डिंग एनवायरनमेंट ये क्या है और इसका इस चर्चा से क्या लेना देना है?
विनिकॉट एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के विकास पर बहुत काम किया। होल्डिंग एनवायरनमेंट का मतलब है एक ऐसा सुरक्षित, स्वीकार करने वाला और भावनात्मक रूप से संभालने वाला माहौल,
जैसे एक माँ की गोद या देखभाल करने वाले का प्यार,
बिल्कुल, जो एक बच्चे के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए जरूरी है। इसी सुरक्षित माहौल में बच्चा धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझना और दुनिया का सामना करना सीखता है।
और थेरेपी में थेरेपिस्ट भी अक्सर यही भूमिका निभाता है ना? एक सुरक्षित जगह बनाना जहां मरीज अपने मुश्किल अनुभवों और भावनाओं को बिना डर के महसूस कर सके।
बिल्कुल। और अब आता है एप्स्टीन का शानदार कनेक्शन। वे कहते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने भीतर ही एक आंतरिक होल्डिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं।
अपने भीतर कैसे?
जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी मुश्किल भावनाओं जैसे डर, गुस्सा, अकेलापन को बिना उनसे भागे, बिना उन्हें दबाए, बस धैर्य और करुणा के साथ देखना सीखते हैं,
हाँ,
तो हम असल में खुद को ही वो सहारा दे रहे होते हैं। हम अपनी भावनाओं को होल्ड करना सीख जाते हैं, उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हैं।
वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब हम बाहरी सहारे पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना सकते हैं।
हाँ, और ये आंतरिक सुरक्षा हमें भावनात्मक रूप से ज्यादा परिपक्व बनाती है। इसी से जुड़ा है विनिकॉट का ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ का विचार।
हाँ, सुना है इसके बारे में। फॉल्स सेल्फ वो मुखौटा है जो हम दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं।
बिल्कुल, या खुद को बचाने के लिए। ट्रू सेल्फ हमारा ज्यादा प्रामाणिक, सहज रूप है।
तो जब हम ये आंतरिक होल्डिंग एनवायरनमेंट बना लेते हैं तो शायद हमें अपने बचाव वाले मुखौटे यानी फॉल्स सेल्फ को छोड़ने का साहस मिलता है।
बिल्कुल, क्योंकि अब हमें पता है कि हम अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों, अपनी मुश्किल भावनाओं का सामना कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, और तब हमारा ट्रू सेल्फ, जो ज्यादा सहज और जीवंत है, वो बाहर आ पाता है।
ये बहुत दिलचस्प है।
और दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन इस ट्रू सेल्फ को बौद्ध अवधारणा शून्यता से भी जोड़ते हैं।
शून्यता? इसका मतलब खालीपन तो नहीं जैसा कई लोग समझते हैं?
नहीं, खालीपन नहीं। शून्यता का मतलब है कि चीजों का कोई स्वतंत्र, स्थायी, ठोस अस्तित्व नहीं है। वे स्वभाव से शून्य है, मतलब वे लगातार बदल रही हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ट्रू सेल्फ भी कोई फिक्स्ड चीज नहीं, बल्कि एक प्रवाह है, संभावनाओं से भरा हुआ।
ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी यात्रा एक क्रमिक विकास की तरह है। मतलब पहले शायद हमें एक ठीक ठाक काम करने लायक अहंकार या फंक्शनल ईगो बनाने की जरूरत है, जो अक्सर थेरेपी का लक्ष्य होता है।
हाँ, बिल्कुल। और फिर उस अहंकार की सीमाओं को देखना, उससे अपनी पहचान पूरी तरह न जोड़ना और उसके पार देखने की क्षमता विकसित करना, ये ध्यान का काम है। एप्स्टीन इस बात पर जोर देते हैं कि आप उस स्व को छोड़ नहीं सकते जो अभी ठीक से बना ही नहीं है।
हाँ, ये बहुत जरूरी संतुलन है।
पहले जमीन पर पैर जमाना, फिर आसमान की ओर देखना।
वाकई। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकल कर आते हैं, क्या टेक अवेज हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा संदेश ये है कि मन को पूरी तरह समझने के लिए हमें दोनों नजरियों की जरूरत है। अपनी व्यक्तिगत कहानी, अपने पैटर्न को समझना, जो मनोचिकित्सा का काम है।
हाँ।
और साथ ही मन की सार्वभौमिक प्रकृति, उसकी प्रक्रियाओं को जानना, जो बौद्ध अभ्यास का काम है। ये सिक्के के दो पहलू हैं।
दूसरा संदेश जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है स्थिर स्व के विचार से मुक्ति। ये मानना कि मैं कोई ठोस, हमेशा एक जैसी रहने वाली चीज है, यही हमारे बहुत सारे दुख और असुरक्षा की जड़ है।
सही बात है।
जब हम खुद को एक प्रक्रिया के रूप में, एक नदी की तरह बहता हुआ देखते हैं तो बहुत हल्का महसूस होता है। सोचिए, समाज में अपनी एक खास पहचान बनाए रखने का कितना दबाव होता है।
बिल्कुल। तीसरा, माइंडफुलनेस सिर्फ शांत होने का तरीका नहीं है, ये अपने मन का एक्सरे करने जैसा है। यह हमें अपनी आदतें, प्रतिक्रियाओं को देखने और उनसे हटकर समझदारी से चुनाव करने की क्षमता देता है।
रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव हों या बड़ी भावनात्मक चुनौतियां, ये क्षमता हर जगह काम आती है।
हाँ। और चौथा, वो आंतरिक होल्डिंग एनवायरनमेंट वाला विचार, ये जानना कि हम अपनी मुश्किल से मुश्किल भावनाओं को भी करुणा और स्वीकृति के साथ संभाल सकते हैं, ये आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का एक अविश्वसनीय स्रोत है।
खासकर हमारे समाज में जहां अक्सर भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है, ये सीखना बहुत जरूरी लगता है।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। जैसे एक विचार का सार है, मनोचिकित्सा स्व का निर्माण करने में मदद करती है, बौद्ध ध्यान उसे भेद कर उसके पार देखने में।
हाँ, ये वही क्रमिक विकास वाली बात, पहले बनाना फिर समझना कि वो बना हुआ भी स्थायी नहीं है। एक और विचार जो मुझे याद आ रहा है, समस्या वो परेशान करने वाला विचार नहीं है जो मन में आया, समस्या उस विचार के साथ हमारा रिश्ता है।
बिल्कुल, हम उससे कैसे चिपक जाते हैं या उससे लड़ते हैं, ये माइंडफुलनेस का निचोड़ है। अगर हम विचारों को सिर्फ बादल की तरह आते जाते देख सकें तो उनकी ताकत आधी रह जाती है।
और तीसरा जिसका जिक्र हमने किया, माइंडफुलनेस हमारे अपने मन के भीतर एक होल्डिंग एनवायरनमेंट बनाती है।
ये आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन का कितना सुंदर तरीका है कहने का।
तो इन सब विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, कुछ व्यवहारिक तरीके, कोई टिप्स?
कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए किसी बात पर बहुत चिंता हो रही है, कोई प्रेजेंटेशन है या घर पर कोई मुश्किल बातचीत करनी है।
हाँ, होता है अक्सर।
तो बजाय चिंता के, विचारों में डूबने के, हम बस रुककर नोटिस कर सकते हैं। ओके, ये चिंता वाले विचार चल रहे हैं, शरीर में यहां खिंचाव महसूस हो रहा है, फिर ध्यान अपनी सांस पर ले आए। ये विचारों को सच मानने से रोकता है और हमें वर्तमान में लाता है।
और रिश्तों में किसी ने कुछ कह दिया और एकदम से गुस्सा या दुख महसूस हुआ,
वहां भी यही काम आ सकता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकें, नोटिस करें, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, सीने में जलन हो रही है। ये समझें कि ये आपकी अपनी प्रतिक्रिया है जो शायद आपकी पुरानी कंडीशनिंग से आ रही है,
और शायद सामने वाले की भी अपनी कहानी है।
बिल्कुल, ये भी याद रखें कि सामने वाले का स्व भी स्थिर नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया भी उनकी अपनी कहानी से आ रही है। इससे थोड़ी सहानुभूति और दूरी बनती है जिससे बहस बढ़ने से रुक सकती है।
और खुद के प्रति जो हम इतने कठोर हो जाते हैं, आत्मालोचना करते हैं,
उसके लिए भी ये आंतरिक होल्डिंग एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। जब मन में आवाज आए, तुमसे नहीं होगा या तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो उसे डांटने या उससे सहमत होने के बजाय उसे सुने।
सिर्फ सुने?
हाँ, समझे कि ये भी एक विचार है, शायद डर या पुरानी चोट से जन्मा हुआ, और फिर खुद से वैसे ही बात करें जैसे किसी परेशान दोस्त से करते, थोड़ी नरमी, थोड़ी करुणा के साथ।
ये वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। मेरे लिए इस पूरी बातचीत से सबसे हैरान करने वाली बात यह विरोधाभास ही है कि पहले अहंकार को बनाना पड़ता है, उसे स्वस्थ करना पड़ता है, और फिर उसी से अनासक्त होना सीखना पड़ता है।
हाँ।
ये दिखाता है कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास कोई सीधी रेखा नहीं है, बड़ा पेचीदा है।
बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे यादगार पहलू आंतरिक होल्डिंग एनवायरनमेंट का विचार है। ये जानना कि हम अपने सबसे मुश्किल पलों में भी खुद को संभाल सकते हैं, ये बहुत सशक्त महसूस कराता है। और ये भी कि दुख कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि इंसान होने का एक हिस्सा है जिसे हम समझदारी और करुणा से जी सकते हैं।
सचमुच ये किताब और ये चर्चा मन को समझने का एक बहुत ही गहरा और एकीकृत नजरिया देती है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका सुझाती है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या हम आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, क्या हम सच में रुककर अपने भीतर इस तरह झांकने, अपनी कहानी और अपने मन की प्रक्रिया दोनों को समझने के लिए तैयार हैं? शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।